ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सबका हार्दिक स्वागत है इस विशेष विलंबित कक्षा में। 8 बजे प्रारंभ होना था, कोई मीटिंग था तो उसमें से निकलते समय लग गया, माफी चाहता हूँ। तो लगभग 5 हफ्ते पहले और 4 हफ्ते पहले एक के बाद एक कक्षा हुई थी। टॉपिक्स कौन कौन से, किसी को याद है? हाँ, गुरु और शिष्य के बारे में, गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए और शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए, आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य के, किसके जीवनी पर आधारित था? श्रीपद रामानुजाचार्य। तो हमने सोचा कि कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो एक प्रकार से एक कक्षा इस वजह से हो रही है, अन्यथा आप लोगों को मुझे सहन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज उसमें से जो कुछ बचा है, कुछ पॉइंट्स, उसका डिस्कस करेंगे। विशेषतः गुरु और शिष्य के बीच सबसे बड़ा गुण वैशिष्ट क्या है, दोनों के बीच के संबंध का। एक था गुरु के बारे में समझा हमने, फिर शिष्य के बारे में समझा, अब दोनों के बीच के संबंध का सबसे बड़ा गुण वैशिष्ट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीपद रामानुजाचार्य के जीवन से हम ये समझ पाते हैं कि आदर्श गुरु किस प्रकार होना चाहिए और आदर्श शिष्य किस प्रकार होना चाहिए। दोनों थे वो, 5 अलग अलग गुरु से अलग अलग विषय उन्होंने, आध्यात्मिक विषय की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और स्वयं उनके हजारों गृहस्थ शिष्य थे, आप जैसे 12,000 शिष्य थे गृहस्थ शिष्य, इसके अलावा 700 सन्यासी शिष्य थे। इस प्रकार आदर्श गुरु भी थे, आदर्श शिष्य भी थे। तो हमने पिछले बार थोड़ा चर्चा किया था कि उनके शिष्यों के गुणगान करते हुए, उनके मुख्यतः 2 शिष्य हैं, वैसे बहुत शिष्य हैं लेकिन मुख्यतः 2 शिष्यों के बारे में आज समझेंगे। उनके जीवन से हम ये समझेंगे कि गुरु और शिष्य के बीच का सबसे बड़ा गुण वैशिष्ट क्या है, वो ये है शरणागति अथवा प्रपत्ति। श्री वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति के बारे में इस बहुत अधिक जोर दिया जाता है। एक्चुअली बोल रहे कुछ देर पहले, जैसे अनिश प्रभु इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस होता है, तो कल सुबह हम दोनों का फ्लाइट है, एक जगह जाना था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए 4 दिन के लिए, तो उसके लिए बात कर रहे थे क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा, माफ करें। तो 8 बजने वाला है, ट्राई करेंगे 9 बजे तक विराम दे और उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकें। इज दैट ओके? सम ऑर्गेनाइजर हियर, हुज हियर ऑर्गेनाइजर्स? लगभग 8:30 को शुरू कर रहा हूं तो 9 बजे तक ही है ना मेरी मर्यादा। तो श्रीपद रामानुजाचार्य के एक प्रमुख शिष्य थे कुरेशा, इनके फोटोग्राफिक मेमोरी थी। फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब शारदा पीठ गए थे कश्मीर में, योग सूत्र ब्रह्म सूत्र की प्रति उनको मिली थी, सरस्वती जी ने स्वयं दिया था, शारदा जी ने स्वयं दिया था, लेकिन रास्ते में आते आते वहां के मायावादियों ने उनसे वापस वो पुस्तक ले लिया। लेकिन 1 महीने के अंतर्गत कुरेश ने उस सारे ग्रंथ को कंटेस्ट कर लिया था। योग सूत्र मतलब छोटा बुक नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स फिजिक्स का बुक नहीं है, सीक्रेट्स ऑफ द वेदास, कंटेस्ट कर लिया था और फिर उसके ऊपर भाष्य अथवा टीका लिखने में मदद करी, जो कि श्रीपाद रामानुजाचार्य का एक संकल्प था अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो शिष्य अपने शरणागति द्वारा अपने गुरु की मदद करता है, लेकिन ये जानते हुए कि जितना भी वह मदद करे गुरु की वो कम है, क्योंकि इतना बड़ा कर्जा है, इतना भारी कर्जा है गुरु के प्रति उसकी, कि वो कभी चुका नहीं सकता. फिर भी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं वन शुड ऑलवेज फील इंडेटेड टू द स्पिरिचुअल मास्टर बट स्टिल वन शुड ऑलवेज ट्राई. ओ जय ग्रेस मुक्ति दादा प्रभु की जय. वन शुड ऑलवेज ट्राई टू पे ऑफ दिस डेट. हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि ये कर्जा चुकाने के लिए, लेकिन ये जानते हुए कि कभी चुका नहीं सकते. तो गुरु और शिष्य के बीच के संबंध का पहला गुण वैशिष्ट यह है कि शिष्य सदैव ऋणी रहता है गुरु के प्रति, और यदि नहीं रहता तो उसे रहनी चाहिए. श्रील प्रभुपाद सदैव जब भी उनका गुणगान किया जाता था कि आपने इतना सब कुछ हासिल कर लिया है, इतनी उपलब्धियां हैं आपको आध्यात्मिक जीवन में, तो क्या बताते थे? आई पर्सनली हैव नो क्रेडिट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू माई स्पिरिचुअल मास्टर इज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज. ये कोई सेंटिमेंटल स्टेटमेंट नहीं है, भावुकतावश बोलने वाली चीज नहीं है. ये समझना चाहिए कि जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं हरो रुष्टे गुरु स्त्राताम गुरो रुष्टे न कश्चन तस्मात् देवं प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत. भगवान अगर हमसे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो गुरु उनके साथ थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं हमारे लिए थोड़ा दलील पेश करेंगे और बोलेंगे बंदा ठीक है, कभी कभी माला कर लेता है, बीच बीच में कुछ अपराध कर लेता है, फिर भी ठीक है, इसको माफ कर लीजिए भगवान. लेकिन गुरु रुष्ट है ना कष्ट, लेकिन उसी गुरु का अगर रुष्ट बना देंगे तो फिर क्या होगा आपका या हमारा? इसलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं तस्माद एवं प्रयत्न है ना गुरु एव प्रसाद है. देयरफॉर एवरी सिंगल एक्टिविटी शुड बी फॉर द प्लेजर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. ऐसा कई कभी कभी लोग पूछते हैं कि मेटीरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, ये प्रश्न उठता है हाँ या ना, यस और नो? तो सर्वप्रथम समझना है कि हम मैटर हैं, स्पिरिट है, हम क्या हैं? हम स्पिरिट है तो फिर मेटेरियल लाइफ का चैंस ही कहां है? एक्चुअली हम स्पिरिट हैं, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, लेकिन हमने अपने आप को जटिल बना दिया, अपने जीवन को मेटेरियल बना दिया. मेटेरियल बनाने की जरूरत नहीं है. किस हद तक हम अपने जीवन को आध्यात्मिकृत बनाना चाहते हैं हम पर है. हम हो सकता है कुछ हद तक ही करना चाहते हैं और इसलिए वहां तक ही सफल हो रहे हैं. कुछ लोग कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए उसके उस मर्यादा तक पहुंच पाते हैं. तो प्रत्येक जीव के पास ये स्वेच्छा रहती है कि वो कृष्ण के शरणागत हो या ना हो, इतनी स्वेच्छा है. हमारी स्वेच्छा का मर्यादा क्या है, सीमा क्या है हमारी स्वेच्छा की, क्या है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ आवर फ्री विल, बताइए. भगवान ने सबको थोड़ी सी स्वेच्छा दी है, सबको है, लेकिन इस स्वेच्छा की सीमा क्या है, बताएं, कोई बताएं? चीप में ना ले, क्लास में आपको भी बोलना पड़ेगा. एक क्लास थोड़ा अलग है, ऐसे नहीं कि हम आगे यहां से बोल के निकल जाएंगे. हाँ सुने नहीं जरा, सॉरी. क्या कर सकता हूं? इच्छा कर सकते हैं किस चीज की? हाँ, अथवा माया क्या है? जो जहां कृष्ण नहीं तय माया अधिकार, या कृष्ण की सेवा करें या ना करें, इतनी है. इससे ज्यादा हमारे पास कोई स्वेच्छा नहीं है, जीरो. हमारे पास इतना ही विकल्प है कि भगवान की शरणागति ले या ना ले. कोई वहम में ना रहे कि हम फ्री हैं. भले अगस्त 15 आ रहा है इंडिपेंडेंस से मनाए, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है. हमारे पास स्वेच्छा जो है सीमित है, और उसकी सीमा यहां तक है कि मैं किस हद तक भगवान के शरणागत हो सकता हूं या नहीं. यदि मैं शरणागत होना चाहता हूं तो शरणागति का माध्यम क्या है? भगवान तो हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं जिससे हम भगवान को देखें. इसलिए गुरु के प्रति जो शरणागति या प्रपत्ति का हम प्रयत्न करते हैं वो है प्रथम पड़ाव और एक प्रकार से आखिरी भी. जिस हद तक हम गुरु के शरणागत होते हैं उस हद तक हम भगवान के शरणागत हैं. यदि हमें समझना चाहिए कि हम भक्ति में कितने आगे बढ़ रहे हैं या आध्यात्मिकता में कितने आगे बढ़ रहे हैं, इसको कैसे समझा जा सकता है? कैसे? अभी भी बताया किस हद तक हम गुरु के प्रति शरणागत है। सिंपल, शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति का मतलब ये नहीं कि गुरु महाराज, ये गुरु महाराज और सदैव उनके सामने बैठा रहना, बस आपका दर्शन करता रहूं। नहीं, वो नहीं है। वो तो मच्छर भी करता है, गुरु का संग करता है, गुरु के शरीर पे आके बैठता है, लेकिन खून चूसता है। हमें मच्छर नहीं बनना, गुरु भोगी नहीं बनना, गुरु सेवक बनना है। एक भक्त था, प्रभुपाद के शिष्य था, हमेशा प्रभुपाद के सामने आके बोलता, प्रभुपाद यू आर ग्रेट, यू आर ग्लोरियस, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट। तो प्रभुपाद, ओके नाउ गो डू सम सर्विस, जाके कुछ सेवा करो प्रैक्टिकल। तो गुरु के शरणागत होने का मतलब है कुछ व्यावहारिक सेवा करना, वो भी है। और कौन सी व्यावहारिक करना, व्यावहारिक सेवा करना, जो कि हमारे चेतना के अनुरूप है, हमारे साइकोफिजिकल नेचर के अनुरूप है, ये गुरु साधु और शास्त्र निर्णय करेंगे। निर्णीतम, उनके द्वारा निर्णित है। तो हमने यहां बताया कि प्रपत्ति गुरु के प्रति, ये जो है, जो श्री वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख सिद्धांत है, और इसी को महाप्रभु ने उससे उधार भी लिया था। उधार नहीं, श्री संप्रदाय का वो सिद्धांत जो है लागू कराया था गौड़ी वैष्णव सिद्धांत में भी। वो क्या है? वैष्णव सेवा। किस हद तक वैष्णव सेवा करें? तो जैसे हम बोल रहे थे, दो शिष्य हैं, कुरेश और दाशरथी, प्रमुख दो शिष्य हैं। दोनों को समान दृष्टिया, एक समस्या आई उनके मन में, उनके मन में एक प्रश्न उठा। वो प्रश्न क्या है? 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भगवद गीता में है। कौन सा है? उसके बाद गीता आगे बढ़ी नहीं है, दूसरे अध्याय के बाद 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है कि सभी प्रकार के धर्मों को त्यागो और मात्र मेरे शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान बोलते हैं यदि ऐसा करेंगे तो सभी प्रकार के पापों से मैं मुक्त करेंगे। मां शुचा, डरो मत। देखिए, भगवान का सब बोलने के बाद दोबारा बोलना पड़ता, डरो मत। हम कितने गए गुजरे हैं, सोचिए। भगवान बोल रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के ऋणों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर भी हमें विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार ये संदेह दोनों के मन में उठा, मैं कैसे समझूं इस मंत्र का तात्पर्य, सर्वधर्मान परित्यज्य। और यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री वैष्णव को जब दीक्षा दी जाती है, आप में से हो सकते कुछ लोग दीक्षा के इच्छुक हैं, दीक्षार्थी हैं। ये दीक्षा की जो प्रक्रिया है गौड़ी सिद्धांत में, वो भी श्री वैष्णव प्रक्रिया पर ही आधारित है लगभग। ताप ऑफ पुंडर तथा नामा यमा यागश्च पंचम, कि चिन्ह लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, नाम मिलता है, मंत्र मिलता है, देवी देवताओं के सामने दी जाती है। इस प्रकार पांच लक्षण है दीक्षा की। दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान और पाप का क्षय। दिव्य ज्ञान यथो दद्यात कुरियात पापस्य संक्षयम। दीक्षा के दिन गुरु जो है हमें दिव्य ज्ञान देते हैं और हमारे जितने भी पाप हैं उनकी क्षति होती है। तो गुरु एक प्रकार से ठेकेदार बनते हैं हमारे बिहाफ पर भगवान से। ये व्यक्ति जो है आध्यात्मिकता के ये नियमों का पालन करेगा तो मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया इसको अपने शरण में ले लीजिए। तो जब कुरेश ने इस प्रश्न पूछा कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, और श्री वैष्णव संप्रदाय में सर्वधर्मान परित्यज्य उनको दीक्षा के बीच में भी दिया जाता है, श्रीमन नारायणो शरणम प्रबत्ते श्रीमते नारायणाया और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षेषामे मा शुचा, यह मंत्र दिया जाता है उनको प्रथम दीक्षा जब दी जाती है। फिर भी इन्होंने प्रश्न पूछा कि इसका अर्थ क्या है। तो रामानुजाचार्य ने बताया कि वैसे कुरेश तो बहुत धनी व्यक्ति थे, यहां तक बताया जाता है, हमने पिछले क्लास में बताया, पता नहीं कितनों को याद है, कि उनको ये पता चला है कि लक्ष्मी जी उनको बुला रही हैं। तब उन्होंने ये बताया कि स्वयं लक्ष्मी जी भी मुझे बुलाएं, उससे बस मुझे घमंड बढ़ेगा कि मैं दानी हूं, इससे बेहतर है कि मैं अपने सारे धन को छोड़कर अपने गुरु के शरणागत हो जाऊं, तो उनके चरण कमल से जो मैं पहुंचूंगा भगवान के, वो मेरे लिए काफी है। ये भाव था उनका।
ये शरणागति के भाव के साथ वो जुड़े थे, वो और उनकी पत्नी। लेकिन जब ये प्रश्न उठा तब रामानुजाचार्य ने बताया कि एक महीना तुम घर घर जाओ और भीख मांगो, और एक महीना तुम्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि अगले वक्त का खाना तुम्हें कहां से मिल रहा है, तब तुम समझोगे सर्वधर्मान परित्यजा का अर्थ, शरणागति का अर्थ तब समझोगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में कठिनाई होती है तब हम भगवान पर अधिक निर्भर होते हैं। वो क्या बोलते हैं, दुख में दुख में करे ना कोई, सुख में करे ना कोई। तो दुख का अभाव ही हम सुख समझते हैं, इसलिए थोड़ा दुख निकल गया तो हमने भगवान का शरणागत जो उसको छोड़ दिया। एब्सेंस ऑफ पेन इज परसीव्ड एज प्लेजर। इस स्थिति में व्यक्ति जब निर्भर होता है, हर घर जाके उनको भीख मांग के अपना नित्यवृत्ति करनी पड़ती है, तब उनको पता चलता है, वैसे उनको पहले पता था फिर भी विनम्रता ऐसे बढ़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि सब वो करें, इसका मतलब यह है कि हम समझें कि किस हद तक हमें भगवान के निर्भर होना चाहिए। हमारा जीवन कुछ नहीं, हमारा जीवन यह है कि हर क्षण में किस हद तक हम भगवान का हाथ देख रहे हैं, यह है हमारा जीवन। जीवन का कोई विश्लेषण पूछ रहे तो यही है, किस हद तक हमने भगवान का हाथ देखा हमारे जीवन में, हमारे चारों ओर हमने किस हद तक भगवान का हाथ देखा। और यह देखने में हमें मदद करता है गुरु के प्रति जो शरणागति का भाव है वो। तो एक महीना पूरा भीख मांगने के बाद जो है उनको लगभग उनका साक्षात्कार पूरा हो गया कि भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरता ही एकमात्र उपाय है, अन्य और कोई उपाय नहीं है। जब ये पता चलता है कि भगवान मुझे कुछ देंगे तभी मुझे कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा, ये भाव हमें आना चाहिए, तब हम शरणागत होंगे। वो बहुत विख्यात कहानी आप सबने सुना होगा, रोड के बीच में एक अनाज का बोरा था, कितने लोगों ने सुना है? वो तो कौन सा अनाज का बोरा उस पर निर्भर है ना। तो अनाज का बोरा जो है वहां पे रखा था, तो एक चींटी आई, वो बेचारा आया जो भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एक दो दाने लेके चली गई, उसके बाद एक चिड़िया आई कुछ दाना चुककर चली गई, आदमी आया लेफ्ट राइट देखा बोरी उठा के चला गया। हमें इतना फेथ था भगवान के ऊपर कि हमें अगले इस वक्त का खाना भगवान दे रहे हैं लेकिन अगले वक्त का देंगे या नहीं मुझे श्योर नहीं है, इसलिए मैं अभी थोड़ा स्टोर कर लेता हूं। इसलिए जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इंश्योरेंस, जबकि इंश्योरेंस मिलता है हमारे परिवार को, हमें नहीं मिलता। और ताज्जुब की बात है कि उसी इंश्योरेंस का एडवर्टाइजमेंट ये दिखाता है हाथ ऐसे करते हुए, योगक्षेमम वहामिहम, जो कि भगवान स्वयं सांत्वना दे रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को जो कि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसमें जो कमियां हैं उनकी पूर्ति करता हूं और उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको मैं निहारता हूं। मतलब देने वाले वैसे ही भगवान है फिर भी हमें डाउट है। तो इस प्रकार का डाउट निकालने के लिए पूर्ण निर्भरता चाहिए, जो जो उनकी इन्होंने सिद्ध किया है कुरेश ने। एक महीने बाद उनको पता चला कि हां भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरता, हर क्षण पर भगवान के हाथ को देखना, हर स्थिति में हर परिस्थिति में, विशेष करके जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध चल रही हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है जैसे यहां पर बताया जा रहा था सुख में करे ना कोई, उसका दूसरा साइड यह है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, हो सकता कई लोग ये बताते हैं, कभी कभी लगता है सब ऊपर वाले की देन है, ऐसा बोल देते हैं कम से कम तार्किक दृष्टि से, इतना हाइपोथेटिकली बोल देते हैं कि हां ऊपर वाले का हाथ है। लेकिन जब दुख होता है, दुख का समय आता है, तब हम पूछते हैं मुझे क्यों दिया ये। आर्थर एश करके एक बहुत फेमस विंबलडन स्टार थे, ही इज द फर्स्ट ब्लैक मैन टू विन विंबलडन टेनिस में 1975 ऐसा कुछ। विचित्र कृष्ण प्रभु मेंशन अबाउट हिम इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स, आई डोंट रिमेंबर समथिंग अबाउट विंबलडन आई थिंक, बट आई हर्ड इट समवेयर एल्स।
आर्थर एश ने उनको कैंसर आ गया था अचानक, लाइफ बहुत हेवी लुकी में है, ब्लड कैंसर, मतलब बचने का और कोई तरीका नहीं है। तब लोगों ने उनसे पूछा, आपको कभी ये नहीं लगता कि भगवान ने मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया? कितने लोगों के जीवन में आया कभी ना कभी ऐसा समय कि भगवान आपने दुख क्यों दिया? ऐसा हाथ ऊपर करिए, साइड में देखना पड़ रहा है, पड़ोसी उठा रहे तो मैं भी उठाऊंगा, नहीं तो भगवान क्या समझेंगे। तो आर्थर एश से पूछा कि आपको ब्लड कैंसर दिया उन्होंने, लुकीमिया दिया, आपको बुरा नहीं लगा? तो उन्होंने बताया, जब भी मुझे ऐसा थॉट आता है, विचार आता है, तो मैं सोचता हूं कि जब मैं विंबलडन अपने सर के ऊपर उठा के, विंबलडन का ट्रॉफी सर के ऊपर पकड़ के खड़ा था, तब मैं ये नहीं पूछा कि भगवान मुझे ही क्यों मिला, भगवान मुझे ही क्यों मिला, ऐसा मैंने तब नहीं पूछा था। तो अब जब मुझे ब्लड कैंसर आ रहा है तब मैं क्यों पूछूं? सीखने वाली बात है, नहीं बात है? हरि बोल, उनके लिए, मेरे लिए नहीं। तो समझना चाहिए हमें कि हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हर स्थिति में हमें भगवान का हाथ देखना चाहिए। इसी को निर्भरता बोलते हैं, डिपेंडेंस। इफ वी वॉन्ट टू बिकम लिबरेटेड, यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता छोड़नी चाहिए। अजीब लग रहा ना, मुक्ति और स्वतंत्रता दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन हम स्वतंत्र चिंता गति को छोड़ेंगे तभी हम मुक्त हो पाएंगे। इफ यू वॉन्ट टू बिकम लिबरेटेड वी शुड गिव अप इंडिपेंडेंस। तो इसी को शरणागति बोलते हैं। दूसरे शिष्य थे, तो बहुत रोचक है, उनका नाम है दाशरथी। दाशरथी बहुत प्रकांड पंडित थे, तो उनको भी यही संदेह आया कि सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है, कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मात्र मेरे शरण में आओ, इस शरणागति का भाव कैसे, इस तात्पर्य को हम समझें। तो रामानुजाचार्य सोच रहे थे कि उनके एक गुरु महापूर्ण थे, पेरिय नंबी महापूर्ण, उनकी पुत्री थी आतुलाई, नाम सब भूल जाए आप, याद रखिए कि उनके एक गुरु की एक बेटी, तो उनका नाम आतुलाई थी। वो आई अचानक और इनके पास आई और बोली, ब्रदर मेरे ससुर ने जो है मुझे, सास ससुर ने जो है मेरे ऊपर गुस्सा किया है, उनके घर से जल लाने का जो स्थान है बहुत दूर है, कुआं बहुत दूर है, इसलिए मुझे बहुत असुविधा होती थी जल लाने में। तो फिर मैंने पूछा कि उनसे कि आप एक नौकर रख सकते हो क्या? तो उन्होंने बताया कि तुम तो कुछ लाए नहीं, तुम तो सुस्त बैठे हो, घर से तुम्हें नौकर लाना चाहिए था, इस प्रकार बोले। तो फिर मैं दुखी होकर मैं घर आ गई वापस, तो मेरे पिताजी ने बोला कि मैं आपका मदद लूं, आपकी मदद लूं मैं। तो रामानुजाचार्य ने बताया कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रसोईया भेजता हूं जो कि तुम्हें पानी लाने के लिए भी मदद करेगा, घर पे खाना पकाने के लिए भी हेल्प करेगा। कौन था? दाशरथी। इसी दाशरथी को, जो बहुत बड़ा पंडित है, इस पंडित को पहले जैसे बुद्धि ज्यादा बढ़ती है तो घमंड भी आ जाता है, वैसे बताते हैं, वैसे तो कहीं शास्त्रों में वर्णित है, विद्या ददाति विनयम, विद्या करने से विद्या विनय संपन्न, जितना अधिक पढ़ाई करते हैं भगवत गीता के संदेश का वगैरह, भागवतम के संदेश का, हमारे विनम्रता बढ़नी चाहिए, तब हमें पता चलता है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला कि नहीं। अगर किसी भी ज्ञान से हमारा घमंड बढ़ता है तो मतलब हमने आध्यात्मिकता में अपने आप को आगे नहीं किया है, अग्रसर नहीं बनाया इस पथ पर। तो दाशरथी को पहले अपने दूसरे गुरु के पास भेजा था, उनके पास जाके बिठाया इस मंत्र का अर्थ समझने के लिए, एक महीना इनसे बात ही नहीं किया उन्होंने। देखिए परीक्षा भी ऐसे मिलते हैं कभी कभी गुरु से, एक महीना बात ही नहीं किया, बोले कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, तुम्हें घमंड है इसलिए मैं तुमको बता नहीं सकता। तो फिर एक महीना वो वेट करते रहे, उसके बाद बोले ठीक है, अब तुम ठीक हो, अब तुम अपने गुरु के पास जाओ, अभी तुम्हें अर्थ समझ में आ जाएगा। इस प्रकार वापस आए और तब उनको ये माताजी मिली, आतुले मिली, और उनके घर दाशरथी को भेज दिया। 6 महीने उनके घर पे एक सामान्य रसोई की तरह खाना बनाते थे, भगवान के लिए भोग बनाते थे और जल लाते थे रोज रोज। क्यों क्यों लाते थे ऐसा? गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा के अनुसार ऐसा किया उन्होंने। तो 6 महीने बाद अचानक एक कथा चल रही थी। कथा में कोई व्यक्ति कोई किसी श्लोक के बारे में बता रहा था। कुछ लोग बोलते हैं इसी श्लोक के बारे में, कुछ लोग अन्य श्लोक बोलते हैं। तो जैसे वो कुछ वर्णन कर रहे थे, दाशरथी ने हाथ ऊपर किया और उन्होंने कई पॉइंट्स ऐसे प्रस्तुत किए शास्त्र से, अलग अलग रेफरेंस देते हुए, श्लोकों का उद्धरण करते हुए, सब बताते हुए, तर्क प्रस्तुत करते हुए उनको गलत सिद्ध कराया जो प्रवक्ता थे। तो उन्होंने बताया तुम क्या, तुम तो एक रसोई हो, तुम क्या जानते हो शास्त्र के बारे में, जाओ जाके अपना काम करो। फिर भी दशरथी चुप नहीं हुए, क्योंकि वो सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहे थे। सिद्धांत के अनुसार जितना भी सत्य है वो सब समझा दिया, इतना समझाया कि वो व्यक्ति खुद प्रभावित हो गया और आके इनका पैर छुआ, बोले कि आप तो बहुत बड़े पंडित हो। वो एक जमाना था जब लोग अपनी गलती मानते थे, कुछ 1000 साल पहले की बात है। अभी तो 2012 है, एक घटना घटी लगभग 1000 ईस्वी में, लगभग 1000 साल पहले। तो लोगों में एक गुण था, अपनी गलतियां मानते थे। और ये दूसरा गुण वैशिष्ट है शिष्य और गुरु के संबंध के बीच में, कि सदैव अपने आप को, हमने पहले भी बोला था, बिफोर गुरु कंसिडर ऑनसेल्फ फूल नंबर वन। जितना भी हमें मालूम है, भले अपने सब्जेक्ट के बारे में भी, अपने ही सब्जेक्ट के बारे में। कभी एक बार ऐसा हुआ भी था, हिसोलनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ हम मॉर्निंग वॉक पे चल रहे थे। तो तब आई वॉज वर्किंग फॉर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर, बहुत साल पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 10 साल। तब उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे न्यूज़पेपर के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में, सब पूछा। तो मैंने 2-3 उत्तर दिए, तब उन्होंने वापस पूछा आर यू श्योर? यस महाराज आई एम श्योर। कुछ समय बाद मैं घर जाके अपने कोलीग से चेक किया, तो मैं जो भी बोल रहा था वो सब गलत था और गुरु महाराज को पहले पता था। तो हमें यह सोचना, यहां तक कि भौतिक ज्ञान भी प्रामाणिक गुरु जो है हमसे ज्यादा ही जानते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम गुरु के लिए कुछ कर रहे हैं या गुरु को सलाह दे रहे हैं, गुरु को उपदेश दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी कर रहे हैं उनकी कृपा है कि हमसे वो सेवा करा रहे हैं, हमको निमित्त बना रहे हैं वो कार्य कराने के लिए। जैसे किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद से, चैतन्य महाप्रभु अगर चाहते तो विश्व भर कर सकते थे ना कृष्ण मानामृत का प्रचार, उन्होंने क्यों नहीं किया? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? वो श्रेय मुझे देना चाहते थे। क्या श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद के। इसी प्रकार गुरु सदैव हमें श्रेय देना चाहते हैं हर परिस्थिति में। तो दाशरथी का ये हो गया, सबके सामने सिद्ध हो गया कि वो पंडित हैं। तो लोगों ने पता कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया मैं रामानुजाचार्य का शिष्य हूं। रामानुजाचार्य के शिष्य? आप यहां क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं यहां पर ये सेवा करूं। और जैसे हमने बताया कि श्री वैष्णव संप्रदाय से 2 प्रमुख सिद्धांत है जिसको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपनाया हमारे गौड़ी सिद्धांत के लिए। एक है वैष्णव सेवा, जो कि ये कर रहे थे, वैष्णव की सेवा कर रहे थे 6 महीना गुरु के आदेश अनुसार। और दूसरा है कर्म और ज्ञान से रहित भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। शुद्ध भक्ति यदि करना है तो हमें सतो वृत्ति अपनाना पड़ेगा, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में ही भक्ति करना पड़ेगा, अनुगत्य में, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए। महाजनो यन गतस्य पंतः। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य ने बताया कि इस प्रकार तुम शरणागत हो, अपने आप को तृण से भी नीच मानो, बिल्कुल पतित समझो अपने आप को, तब जाकर तुम सेवा करोगे, तब तुम्हें सर्वधर्मान प्रतिज्ञा का अर्थ समझ में आ जाएगा। अर्जुन बहुत सारे दलील प्रस्तुत कर रहे थे लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बताया उनको, बस मुस्कुरा रहे थे भगवद गीता के रंगमंच पर। लेकिन जब अर्जुन ने बताया शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब मैं शरणागत होता हूं, आई एम योर डिसाइपल एंड अ सोल सरेंडर्ड अन टू यू, जब तक अर्जुन ने यह बात नहीं कही भगवान ने उनको कोई उपदेश नहीं दिया था, तभी भी बोला तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, व्यासदेव के पास जाओ और भी लोग हैं वो समझाएंगे तुम्हें। हाँ भगवान ऐसे बता रहे हैं। लेकिन फाइनली अर्जुन ने बताया कि नहीं नहीं आप ही मुझे समझाएं, मुझे पता नहीं मेरे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए आप मुझे उपदेश करो। तो इसी प्रकार जब दाशरथ ने प्रश्न किया कि मुझे समझाइए प्रपत्ति क्या है, शरणागति क्या है, गुरु ने उनको तरसाया, लगभग एक महीना दूसरे व्यक्ति के पास भेजकर फिर 6 महीना सेवा कराकर समझाया। क्योंकि इस प्रकार कठिनाई से जो शिक्षाएं हम सीखते हैं, कभी कभी गुरु हमें परीक्षा भी देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वीट खिलाते हैं, कभी कभी प्रसाद दे देते हैं हाथ में, लेकिन कभी कभी परीक्षा भी मिलती है। परीक्षा इसलिए मिलती है, जैसे अमेरिका के सेना में भी एक कहावत है, एनीथिंग दैट डस नॉट किल यू मेक्स यू टफर, आपको जो चीज मारती नहीं है वो आपको मजबूत बनाती है। तो जो परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है जीवन में, कृष्ण के कृपा से और गुरु के द्वारा दी गई परीक्षाओं के द्वारा, वो हमें और मजबूत बनाते हैं शरणागति के लिए। और ये शरणागति से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं। वेदेशु दुर्लभम अधुर्लभम आत्मभक्तो, ज्ञान से तर्क से वेदों के अध्ययन से भी हम भगवान को नहीं समझ सकते, अधुर्लभम आत्मभक्त, लेकिन आत्मभक्त के लिए आसान है, भगवान के निज भक्त के लिए बहुत आसान है। एक और भक्त थे गोविंद करके, तो वो रामानुजाचार्य के एक सीनियर गुरु भाई थे शैल पूर्ण करके, उनके शिष्य थे, लेकिन उन्होंने इनको सौंपा था कि आप इनकी सेवा करो करके। तो वो रोज क्या करते थे, रामानुजाचार्य के लिए बिस्तर बनाते थे, सोने के लिए बिस्तर बनाते थे, लेकिन बिस्तर बना के क्या करते थे, खुद लेट के चेक करते थे। तो अजीब लगता है ना कि गुरु के लिए बिस्तर बना रहा है शिष्य लेट रहा है। तो ये बात जब पता चला जो रामानुजाचार्य ने खुद पूछा और शैलापूर्ण से चेक कराए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, मर्यादा का व्यतिक्रम है, गुरु के लिए बिस्तर बना रहे हो और खुद लेट रहे हो। तब गोविंद ने बताया अगर गुरु के बिस्तर में लेटने से मुझे नरक जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिस्तर अगर ठीक सज गया तो मेरे गुरु जो है चैन की नींद सो सकते हैं। तो ये भाव शिष्य में होना अनिवार्य है, भले ही मुझे कठिनाई हो कई प्रकार के, किसी न किसी स्थिति में मुझे ऐसा पड़े, यहां तक स्थिति हो सकती है कि भक्तों से हम दूर रह जाएंगे, हो सकता है परिस्थितियां यहां तक पहुंच सकती है, फिर भी यदि सिर्फ हमें गुरु के वचनों पर विश्वास है, गुरु के शरणागति में विश्वास है, गुरु के प्रसन्नता में विश्वास है, भजनीय सुखमात्र भजनीय परम पुरुष सुखमात्र स्वसुखत्वम, शुद्ध भक्ति का विश्लेषण यह है एक प्रकार से कि परम पुरुष भगवान के सुख में ही मैं अपना सुख ढूंढूं, बस मेरा सुख है भगवान का सुख। और भगवान का सुख क्या है मुझे कैसे पता, गुरु का सुख क्या है, यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो, जिनकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक बार श्री भक्त सिद्धांत महाराज थे जो प्रभुपाद के गुरु महाराज, तो उनके शिष्य ने उनके शिष्यों के सामने वो भगवान को प्रसन्न करने की बात कर रहे थे। तो एक शिष्य जो है क्या कर रहा था, उनको पंखा चला रहा था, तो उन्होंने पूछा तुम ये क्यों कर रहे हो, तो उसने बताया कि आपके वचनों से हमें पता चलता है कि गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो मुझे अलग भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत है, मैं आपको प्रसन्न करूं मेरे लिए काफी है। और यह प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि भगवान से कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स अभी आ भी रहा है तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु को सेवक भगवान बोलते हैं, आश्रय विग्रह बोलते हैं, भगवान को अर्च विग्रह और सेव्य भगवान बोलते हैं। दोनों भगवान है, दोनों विग्रह हैं। भगवान जो है आश्रय विग्रह है, सॉरी अर्च विग्रह है। गुरु जो है आश्रय विग्रह है, वो विग्रह, वो रूप जिनका हम आश्रय ले, जिससे कि हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। और भगवान सेव्य भगवान है, लेकिन गुरु जो है सेवक भगवान है। तो इस सेवक भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता देखते हुए, हर परिस्थिति में भगवान पर ही निर्भर होते हुए और गुरु की प्रसन्नता को ही अपने जीवन का ध्यान और ध्येय बनाते हुए, गुरु के दिए हुए भजन क्रिया को, भक्ति की विधियों का पालन को ही जीवन का परम लक्ष्य मानना चाहिए। भगवत अर्चना रूपे का निष्काम कर्म भी विशुद्ध चेतः, चाहे मैं शुद्ध हो जाऊं, बहुत बड़ा भक्त बन जाऊं, या मैं बद्ध जीव बना रहूं, हर परिस्थिति में मेरे जीवन का परम उद्देश्य है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो दिया है 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, शील प्रोपात के ग्रंथों का अध्ययन, वैष्णवों की सेवा, कृष्ण प्रसाद का सेवन, इस प्रकार सरल जो तरीका दिया है भगवान को समझने के लिए, हर परिस्थिति में मैं ये करता रहूंगा, भले मैं शुद्ध बनूं ना बनूं, लेकिन उन्होंने ये प्रक्रिया मुझे दी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं इसमें सफल होऊंगा। यह है शॉर्टकट शरणागति का। अभी 9 बज गए, वैसे मुझे बोलने को बहुत कुछ है, फिर भी समय के सीमाओं को ध्यान रखते हुए अभी एक पॉइंट बता के विराम देते हैं। वो पॉइंट यही है कि शॉर्टकट भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है, तो वो है पूर्ण प्रपत्ति अथवा शरणागति। और प्रपद्यमानस्य भवास्नतस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुतपायो अभि ग्रासाम। भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक साथ हमें पता चलता है भगवान का उपस्थित्व, भक्ति का भाव और विरक्ति, ये तीनों एक साथ आ जाते हैं। विरक्ति, भक्ति का भाव और भगवान का साक्षात्कार अनुभव, ये तीनों एक साथ आ जाते हैं भक्ति में। कैसे? जैसे खाते समय हमें 3 बातें होती हैं, भूख मिटती है, शरीर को शक्ति मिलती है और स्वयं को तृप्ति मिलती है। इस प्रकार ये तीनों चीजें जैसे मिलती हैं, वैसे ही भगवान की भक्ति करते समय भगवत प्रेम मिलता है, भगवान का साक्षात्कार मिलता है और विरक्ति अपने आप, गलत चीजों से विरक्ति आ जाती है। तो अलग अलग शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है। भगवान के ये प्रपद्य मानस्य प्रपन्नम शरणागति गुरु के प्रति कर लेंगे तो उसी में सारी उपलब्धियां हैं, सारी उपलब्धियां इसी में हैं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य वा प्रतिते ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जो व्यक्ति गुरु को प्रसन्न करता है और गुरु में ही सारे गुण देखता है, उसके लिए शास्त्र के जितने भी वचन हैं, जितने भी निचोड़ हैं, जितने भी सार हैं, वो सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इतना शॉर्टकट बोला, एक ताली भी नहीं, ताली इस श्लोक के लिए उपनिषद से, कि इतना शॉर्टकट में उन्होंने बता दिया कि गुरु को जो प्रसन्न करता है उसके लिए समस्त वैदिक शास्त्रों के सारे तात्पर्य अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इसलिए श्रीपद रामानुजाचार्य के जीविका से, जीवन से, उनके गुरु, उनके शिष्यों के साथ उनके संबंध से और उनके स्वयं की गुणवत्ता से हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में हमें भगवान की उपस्थिति देखना चाहिए, भगवान का हाथ देखना चाहिए और समझना चाहिए कि शरणागति का एकमात्र उपाय है गुरु और वैष्णवों की प्रसन्नता। और दीक्षा के समय प्रत्येक भक्त को यही ध्यान रखना चाहिए कि किस हद तक मैं अपने आप को सौंप सकता हूं भगवान गुरु को। दीक्षा का मतलब यह है अपने आप को सौंपना गुरु को। तो कभी कभी लोग आते हैं प्रोग्राम के बाद, हमें पूछते हैं, मैं जुड़ना चाहता हूं आपके इस आंदोलन से, आपके आंदोलन में दीक्षा कैसे ली जाते हैं, सब पूछते हैं। तो दीक्षा बहुत सरल है, दीक्षा कोई यज्ञ करने से तो होता है, पांच चीजें हैं, नाम दिया जाता है, तिलक दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है, यज्ञ होता है, पांच चीजें हैं, ताप पुंड्र तथा नामो, और इस प्रकार पांच चीजें बताते हैं। लेकिन इन सबके ऊपर एक बात है जो कि शरणागति, और ये दीक्षा यज्ञ हुए बिना ही शुरू हो जाती है। यदि आपने गुरु का शरण लिया है, उनके वचनों का पालन किया है, तो ये यज्ञ हुए बिना भी दीक्षा अपने आप प्रारंभ होती है। फिर भी उसको सार्थक बनाने के लिए यज्ञ करना है। ये खत्म करने के लिए ताली बजाना है कि कैसे? ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? अब क्या बताएं, 9-8 को पूछ रहे प्रश्न है क्या? हाँ, डाउट क्यों होता है? डाउट इसलिए है कि हम पूर्ण शरणागत नहीं है, अभी शरणागति की प्रक्रिया में है, और सेल्फ डाउट इसलिए हो रहे हैं कि हम उन लोगों के साथ संग नहीं कर रहे हैं जिनकी श्रद्धा सुदृढ़ है। अगर उन लोगों के साथ हम संग करेंगे जिनकी श्रद्धा सुदृढ़ है, वो निरंतर हमें बताते रहेंगे कि हर परिस्थिति में किस प्रकार भगवान का हाथ है, किस प्रकार भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो समझाते रहेंगे और हम समझते रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमें जैसा संग वैसा रंग, अधिक से अधिक हमारा संग उन लोगों के साथ ही सामान्यतः जीवन में होता है जिनकी श्रद्धा उतनी सुदृढ़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें शास्त्रों में ज्यादा हमारा जो है विश्वास नहीं है, कम है। जितना शास्त्र पढ़ेंगे उतना भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जितना शास्त्र पढ़ेंगे जड़ और चेतन के बीच का अंतर पता चलता है, मैटर एंड स्पिरिट। जब जड़ और चेतन के बीच का अंतर पता चलता है, तब पता चलता है कि यहां पर भगवान का हाथ है या नहीं है। हमेशा है वैसे, लेकिन उसको देखने की क्षमता हमें इस प्रकार मिलती है। आपका प्रश्न का उत्तर मिला? और कोई प्रश्न क्या है? नहीं, वो भी अच्छा प्रश्न है, लेकिन मेरे पास उत्तर नहीं है उसका। पाद रामानुजाचार्य की श्री श्री ब्रह्म गौड़ी मत संप्रदाय की श्री संप्रदाय की स्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की गुरु शिष्य संबंध परंपरा की निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।